वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी तरह के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 3, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। काल शंकु में अभी तक आपने सुना कि अनंत को रेगिस्तान की रेत में दबा एक बक्सा मिला, जिसे खोलने पर उसे पता लगा कि यह बक्सा पिछले 100 सालों से रेत में दबा हुआ था। बक्से में मिले एक शंकु ने अनंत की हैरानी को और बढ़ा दिया। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे इन चीजों का कोई मतलब नहीं समझ आया तो उसने इसे महज एक संयोग समझकर अगले दिन वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। लेकिन रात को अचानक कमरे में हुए कंपन से उसकी आंख खुल गई। वो सोचने लगा, कहीं ये भूकंप के झटके तो नहीं है। अनंत तेजी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने कमरे की लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन बिजली नहीं आ रही थी। अनंत ने फोन की टॉर्च ऑन की और माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसका ध्यान वहीं पास ही टेबल पर रखे शंकु पर गया। ये वाइब्रेशन इस कोन में हो रहा है। कंपन उस शंकु में ही हो रहा था। अनंत ये देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी उस शंकु पर डाली, लेकिन अगले ही पल उसने रोशनी वहां से हटा ली, क्योंकि उसे लगा जैसे उस शंकु पर उकेरे गए बिंदु और घुमावदार दरार चमक रहे हों। उसे यकीन हो गया कि ये उसका भ्रम नहीं था। शंकु में होते कंपनों के साथ उस पर उकेरे गए बिंदु और घुमावदार दरार रह रहकर चमक रहे थे। अगर आज दिन में अनंत और उसके साथियों ने खुद उस शंकु को अपने हाथों से उस बक्से से नहीं निकाला होता तो अनंत पक्का यही कहता कि यह कोई चाइना मेड शोपीस आइटम है जो बैटरी से चला करता है। लेकिन उसे पता था कि यह कोई 5 किलो वजन की भारी भरकम ठोस चीज है जो इस वक्त अपने आप चमक रही है। अनंत के दिमाग में उसी वक्त हजारों तरह के ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी एक जोर की आवाज से अनंत डर के मारे कांप उठा। पास ही कहीं जोर की बिजली कड़की थी और अनंत ने शायद यह महसूस भी किया था कि बिजली कड़कने की आवाज के साथ यह शंकु एक बार जोर से चमका था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस जोरदार चमक और आवाज के बाद शंकु की चमक और कंपन एकदम बंद हो गए थे। ये सभी घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि अनंत कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। अनंत अभी भी उस शंकु के पास खड़ा इंतजार कर रहा था कि फिर से शंकु में कोई हरकत होगी। उसने करीब 2 मिनट तक चुपचाप उस शंकु में किसी हरकत के होने का इंतजार किया। बाहर होती जोर की बारिश और रह रहकर कड़कती बिजलियों ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। आखिरकार डरते डरते उसने शंकु के हाथ लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत देखना चाहता हो कि उसे कहीं कोई करंट तो नहीं आ जाएगा, लेकिन वो एकदम सही सलामत था। अनंत ने उस शंकु को हाथ में उठा लिया और टॉर्च की रोशनी में उसे देखने लगा। काफी उलटने पलटने के बाद भी उसे अब उस कोन में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। वो कोन को लेकर बिस्तर पर लेट गया और उसे एकटक देखने लगा। कोन में अब किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी, लेकिन कोन को लगातार देखते देखते अनंत पर एक नशा सा छा गया था और ना जाने क्यों थोड़ी देर में ही उसे ऐसा लगने लगा कि अभी जो कुछ हुआ था वो कहीं उसके मन की कल्पना तो नहीं थी। अनंत ने अपने आप को संभाला। उसके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि ये जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ कहीं ये उसका कोई सपना या भ्रम तो नहीं था। वो सोच रहा था कि रात को सोते वक्त उसके हाथ में ये शंकु था और फिर उसने शंकु टेबल पर रख दिया और बेड पर आकर सो गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस कोन को हाथ में लिए ही सो गया था और फिर मैंने कोई सपना देखा हो। जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था वो वाकई में नाकाबिले यकीन था, इसलिए अनंत को लगने लगा कि ये कहीं सपना तो नहीं था। वो जानता था कि नींद की कमी में ऐसा कई बार हो जाता है। काफी देर तक असमंजस की स्थिति में रहने के बाद उसने सिगरेट जला ली और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो क्या था। बाहर निकलते ही दूर उसे अंधेरे में एक साया और दिखाई दिया। एक बार की उसे देखकर अनंत की रूह कांप उठी, लेकिन जैसे ही उसने उस साये के साथ टिमटिमाती छोटी सी लाल रंग की रोशनी देखी तो वो हंस पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, क्यों वैम्पायर, नींद नहीं आई क्या? ये सुशांत था जो हाथ में सिगरेट लेकर बाहर टहल रहा था। यार बिजली नहीं है, कमरे में घुटन सी फील हो रही थी, बाहर मौसम भी अच्छा था, सो आई केम हियर टू सेलिब्रेट। सुशांत अनंत के बगल वाले रूम में ठहरा था, बल्कि वो टेबल जिस पर कोन रखा था उससे सटी दीवार के ठीक दूसरी तरफ सुशांत का बेड लगा था। यानी अगर इतने तेज वाइब्रेशंस हुए हैं तो सुशांत ने भी जरूर महसूस किए होंगे। ये सोचकर अनंत ने सोचा कि उससे सुशांत से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, और कोई मौका होता तो वो खुलकर सुशांत से बात करता। लेकिन आज अनंत बात करते हुए थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं ये सब बस एक सपना तो नहीं था। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, अभी मैंने कुछ वाइब्रेशंस फील किए थे, तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, बिजली बहुत पास गिरी थी, उसके बाद कुछ लगा तो था। सुशांत की बात सुनकर अनंत ने कहा, मैं बिजली गिरने से पहले की बात कर रहा हूं, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो, भूकंप के झटके। जवाब में सुशांत ने कहा, नहीं तो क्यों, तुझे लगा था क्या? सुशांत का जवाब सुनकर अनंत का जोश ठंडा हो गया। हाँ, हो सकता है मेरा फोन वाइब्रेट किया हो। सुशांत जोर से हंसने लगा, अनंत भी उसके साथ हंस रहा था, लेकिन उसका कंफ्यूजन पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। तभी थोड़ी देर में ही जनरेटर शुरू होने की आवाज आई और गेस्ट हाउस फिर से रोशन हो गया। सुशांत ने कहा, तो सुबह कितने बजे निकलने का है प्रोग्राम? अनंत ने जवाब दिया, जल्दी ही। दोनों वापस अपने कमरों में लौट आए। अनंत ने फिर से उस शंकु को उठाकर देखा। उसे लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ इस कमरे में हुआ वो सच था, लेकिन उसके मन के एक कोने से ये आवाज आ रही थी कि ये केवल एक भ्रम था। अनंत बिस्तर पर लेट गया और इसी बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में खो गया। रात को तेज बारिश हुई थी और इस बारिश की वजह से मौसम में ठंड बढ़ गई थी। गेस्ट हाउस का मालिक कह रहा था कि उसने इतनी तेज बारिश यहां बरसों से नहीं देखी थी, और अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अनंत को लगा कि इससे एक बार रात वाली घटना के बारे में बात करके देखनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने ये विचार त्याग दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस शंकु के बारे में किसी को पता लगे। अनंत अपने कमरे में आ गया, उसने अपना सामान बांध लिया था, उसने वापस से शंकु को देखा। वो रात वाले एक्सपीरियंस के बारे में किसी से बात करना चाहता था, लेकिन जब सुशांत, जिसका कमरा उसके सबसे ज्यादा करीब था, उसे किसी तरह के वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुए, तो फिर और किसी से क्या बात करता। लेकिन तभी राज उसके कमरे में आया। अनंत सर, आपसे एक बात करनी थी। हां राज, बोलो। सर, मुझे पता है कि आप हंसेंगे, लेकिन सर बात ऐसी है कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अनंत गौर से उसकी बात सुन रहा था। सर, रात को मैं सोया हुआ था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। मैं अपनी जगह उठकर बैठ गया, तभी थोड़ी देर में बिजली कड़कने की आवाज आई और बारिश शुरू हो गई। ये सुनते ही अनंत की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके दिमाग ने तर्क किया, तुम्हारा रूम तो कोने वाला है ना? नहीं सर, कल सुशांत सर ने बोला कि उनको खुले में बैठ के ड्रिंक करना है, इसलिए वो मेरे वाले रूम में आ गए और मैं उनके रूम में आ गया। तुम सुशांत के रूम में थे? मतलब मेरे पास वाले रूम में, यानी कि ये जो टेबल है इससे सटी दीवार के पास तुम्हारा बेड था। अनंत ने उस टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर रात को शंकु रखा हुआ था। यस सर, कोई प्रॉब्लम है? राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनंत ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, राज, इंसान जिस चीज में यकीन करता है वो उसे हासिल कर ही लेता है। वो अर्थक्वेक असल में वाइब्रेशंस थे जो इस कोन से आ रहे थे, और इस कोन में बने हुए डॉट्स और ये जो दरार है इनसे चमक भी निकल रही थी। फिर जैसे ही बिजली कड़की उसके बाद इसके वाइब्रेशंस और चमक दोनों बंद हो गए और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। राज शक के साथ अनंत की तरफ देख रहा था। अनंत के चुप होते ही वो बोला, अनंत सर, इसीलिए मैं ये बात किसी को नहीं बता रहा था। आप भी मजाक बनाने लग गए। नहीं राज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली ये सब रात में हुआ था। मैंने उसी वक्त सुशांत से कंफर्म किया, लेकिन उसने उस वक्त क्यों मना किया ये मुझे अब समझ में आया है। लेकिन राज अब भी अनंत की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। नहीं सर, आप मुझे बना रहे हैं, मैं जानता हूं आपको, पर आप तो सुबह सुबह चालू हो गए। राज कमरे से बाहर चला गया। अनंत बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि जो कुछ रात को हुआ वो उसका वहम नहीं था, लेकिन इस सारे वाकये का मतलब समझकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये चीज 100 साल बाद जमीन से बाहर आई है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है। और रात को जो बारिश हुई उससे भी इसका कोई ना कोई रिलेशन है, और मुझे मालूम करना है। लेकिन अब अगर मैं दिल्ली निकल गया तो सारा कचरा हो जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अनंत अपने बाकी साथियों के साथ खड़ा उनसे बात कर रहा था। सुशांत, तुम ज्ञान के साथ दिल्ली चले जाओ, वहां सारे फुटेज और बाकी मटेरियल चैनल में सबमिट कर देना। मुझे यहां कुछ काम है, राज मेरे साथ रुक रहा है। अनंत की बात सुनकर सभी चौंक गए थे, लेकिन अनंत ने उनसे कह दिया कि यहां क्या हुआ इस बारे में ज्यादा किसी से बात ना करें, या तो वो 2-3 दिन में दिल्ली लौट ही आएगा, वरना उनको वापस बुला लेगा। थोड़ी देर में सुशांत ज्ञान के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। राज हैरत के साथ अनंत की तरफ देख रहा था। अनंत सर, क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सभी मेरे साथ कोई प्रैंक खेल रहे हैं। राज की बात सुनकर अनंत हंस पड़ा और राज को लेकर गेस्ट हाउस के रूम में आ गया और उसे रात की पूरी बात बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद राज बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने डरते हुए कहा, अनंत सर, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अब यार, तुम्हारे यकीन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो हुआ वो मैंने तुम्हें बता दिया। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। आखिर में राज ने ही कहा, तो सर अब क्या करना है। हमें इस कोन के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये क्या चीज है। राज ने फिर से डरते हुए कहा, सर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। अनंत उस पर फट पड़ा। यार राज, ऐसे काम नहीं होता है। मैं सुशांत को रोक सकता था, लेकिन मुझे पता है कि जो काम तुम कर सकते हो वो सुशांत नहीं कर सकता। मैं इस चीज का पता लगा कर रहूंगा। अब भी अगर तुम नहीं चाहते हो तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस बुला लेता हूं, तुम उनके साथ चले जाओ। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। अनंत को पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन वो राज के जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिरकार राज ने कहा, ठीक है सर। क्या ठीक है, बुलाऊं उन्हें फोन करके वापस? नहीं सर, मैं आपके साथ हूं। अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने वापस कहा, एक बार और सोच लो। सर मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ रुक रहा हूं, चाहे फिर जो भी हो। अनंत ने खुश होकर कहा, यह हुई ना बात, तो सबसे पहले हम बक्से में मिले सारे सामान को वापस चेक करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि शुरुआत कहां से करनी है। दोनों ने वापस से उस सामान को देखना शुरू किया। वो सारे सामानों को उलट पुलट कर चेक कर रहे थे कि कहीं कोई चीज वो मिस तो नहीं कर रहे, लेकिन घंटे भर की मशक्कत के बाद भी वो वहीं थे जहां पिछले दिन थे। राज ने कहा, सर कुछ नया पता नहीं लगा, बस हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। पहली इस पर लिखी तारीख 15 फरवरी 1919 और दूसरा इस पर लिखा नाम गोपाल दास। अनंत ने जवाब दिया, और आज तारीख हो गई है 11 फरवरी 2019। देखना इस तारीख पर हिस्ट्री में कुछ मिलता है क्या। राज ने अपने आईपैड पर सर्च करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मायूसी से कहा, सर इंटरनेट पर 15 फरवरी 1919 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इस दिन बॉम्बे की एक कपड़ा मिल में हड़ताल हुई थी और बंगाल में एक बड़ी डकैती हुई थी और एक आध मर्डर वगैरह। विकिपीडिया पे भी कुछ नहीं मिला, एकदम सूखा था ये दिन। अनंत ने माथे पर सलें डालते हुए कहा, एक काम करते हैं, ये गोपाल दास के बारे में पता करते हैं। लेकिन सर इंटरनेट पर हजारों गोपाल दास होंगे, अनंत ने हंसते हुए कहा। मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोगों से पता करने के लिए कह रहा हूं। बट सर, इस पूरे सिटी में भी बहुत सारे गोपाल दास होंगे और हम तो 100 साल पहले के गोपाल दास को ढूंढ रहे हैं। राज, एक बार ढूंढना शुरू करें, ठीक है। दोनों गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर आ गए। टीवी देखते हुए गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा,
सर अच्छा किया जो आप लोग रुक गए,
वैसे कुछ काम था आपको? अनंत ने जवाब दिया,
नहीं कुछ खास तो नहीं, बस यूं ही कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च करनी थी।
वैसे सर रिसर्च करने के लिए काफी कुछ है यहाँ,
माहौल में अभी भी प्योरिटी है। अब ऐसा है कि रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी तेज पड़ती है, इसलिए बाहर से लोग घूमने तो आते हैं, मगर यहाँ अभी भी मैक्सिमम लोग वही हैं जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं।
तभी अनंत का ध्यान वहां रखे कुछ एंटीक आइटम्स पर जाता है। उसने पूछा,
आप एंटीक आइटम्स में भी डील करते हैं?
हाँ सर, आपको कुछ चाहिए?
नहीं बस वैसे ही कुछ।
गेस्ट हाउस के मालिक ने उसे वहीं साथ में रखे कुछ सामान दिखाने शुरू कर दिए। अनंत उन सामानों को देख रहा था, लेकिन असल में वो जो जानना चाह रहा था वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया।
गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, सर हमारे यहाँ एंटीक आइटम्स की ज्यादा वैरायटी नहीं है, यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन असल एंटीक आइटम्स चाहिए तो वो मैं आपको दिखाता हूं।
उसने अपने मोबाइल पर एक कैटलॉग दिखाना शुरू किया जिसमें 100-200 साल से भी ज्यादा पुरानी चीजें थी। सर ये आइटम्स मैं आपको सही रेट में दिलवा सकता हूं, आप देख लीजिए अगर कुछ पसंद आए तो। अनंत कैटलॉग के फोटोज को जूम करके देखने लगा, तभी उसका ध्यान कांसे से बनी एक ऊंट की मूर्ति पर गया। उस मूर्ति पर उसे कोई नाम लिखा दिखाई दिया। अनंत ने उससे पूछा,
ये इस पर कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये?
सर ये तो क्या है कि जिस कारीगर ने इसे बनाया या जिस दुकान का ये माल है उसका नाम लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे पेंटर तस्वीर पर अपना साइन करता है।
ओके,
अनंत को समझ आ गया कि गोपाल दास या तो इस शंकु को बनाने वाला कारीगर था या फिर इस नाम से उसकी कोई दुकान थी। उसने पूछा,
मैंने ऐसा ही एक आइटम देखा था, उस पर गोपाल दास नाम लिखा था, आपने सुना है नाम?
गेस्ट हाउस का मालिक सोच में पड़ गया,
गोपाल दास?
नहीं सर कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, काफी सारे कारीगर थे यहां पर, अब कोई फेमस कारीगर हो तो उसका तो पता लग जाता है, हर एक का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है।
अनंत ने आगे पूछा,
कहीं से पता लग सकता है इसके बारे में?
सर बहुत मुश्किल है,
लेकिन सिटी में कुछ पुरानी एंटीक आइटम्स की शॉप्स हैं, वहां मालूम करें तो शायद पता लग सकता है।
ओके थैंक यू।
तब तक राज भी आ चुका था, अनंत उसके साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी गेस्ट हाउस के मालिक ने पूछा,
लेकिन सर एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या था?
अनंत ने चलते चलते जवाब दिया,
नहीं अभी तक कुछ फाइनल नहीं है,
और वो राज के साथ अपनी एसयूवी में बैठकर रवाना हो गया। राज ने पूछा,
सर हम किधर चल रहे हैं?
जवाब में अनंत ने कहा, देखो गोपाल दास या तो कोई कारीगर था या फिर कोई फर्म थी जिसने की ये चीज बनाई थी, तो हम सिटी में गोपाल दास को ढूंढने जा रहे हैं। अब तुम एक काम करो, नेट पर सर्च करो कि क्या गोपाल दास नाम की कोई शॉप या कोई फर्म इस शहर में है क्या, ये पुराना शहर है, यहां ऐसी कई दुकानें हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। राज ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन उसे 3 दुकानें ऐसी मिली जिनके नाम में गोपाल दास नाम आ रहा था। सर पहली दुकान है गोपाल दास रामदास, ये तो कोई मसाले की दुकान है। दूसरी है मनोहर लाल गोपाल लाल, ये कपड़ों की दुकान है। और तीसरी है हरीश चंद्र गोपाल दास, ये कोई ज्वेलर है। अनंत ने गाड़ी रोक ली,
मुझे लगता है कि ये तीसरा नाम जो तूने बताया,
सर हरीश चंद्र गोपाल दास।
हाँ 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 हरीश चंद्र गोपाल दास, यहां हमें ट्राई करना चाहिए, ये ज्वेलर है, शायद इसका कोई कनेक्शन हो उस कौन से।
आप सुन रहे थे काल शंकु पॉडकास्ट वो कहानियां पर, यह था भाग 3, लेखन और आवाज दीपक मेढ़तवाल।